Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो कहता है हमारे मनोरथ पूरा नहीं हुआ, पहले का संवादि भ्रम है, दूसरे का विसंवादि भ्रम है। ये देखो, ध्यान रख लेना। इसलिए मैंने आज पहले ही भ्रम के भेद की व्याख्या करना शुरू किया। यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम इति काचास्मनिमणि जले पेष्टे क्षीरम भवति मृग तृष्णा सुसलिलम। बुद्धि भवती है, बुद्धि का अन्वय करते जाना। तथा देव भ्रांत्या, हे देव, हे शिव, इसी तरह कुछ जड़मति जड़धि भ्रांति से क्या करते हैं? भवत अन्यम भ्रांत्या भजति, आपको छोड़कर आपके सर्वव्यापकता को न जानने वाले, आपकी सेवा करना छोड़कर अन्य अन्यों की सेवा करने चले करते रहते हैं। आपकी सर्वव्यापकता को न जानने वाले भ्रांति से अन्य अन्य की पूजा करने लग जाते हैं। और हमारे महाराज जी ने कहा, अरे भाई, राम की पूजा छोड़कर हनुमान की पूजा करने शुरू कर दिया। राम बड़े हैं कि हनुमान बड़े हैं? बोलो, राम मालिक हैं, और उन राम मालिक की तो पूजा नहीं करते हैं, क्या करने लग गए? हनुमान जो राम के सेवक हैं उनकी पूजा करने लग गए। ले जी, क्यों महाराज? बोले, हनुमान जी के बारे में सुना है, हाँ? बाल समय रज भक्त छिलिनो तब तीन हूं लोक भयो अधियारो, काई सुत्रास ताई सुत्रास भयो जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जय जग में कभी संकट हुए। जितना भी जो भी संकट आएगा, भगवान माने हनुमान जी सारे संकट को दूर करने वाले हैं। संकट मोचन हनुमान की जय। देव जी, तो देखो, हनुमान जी शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र है, शिव है। शिव के जो 11 स्वरूप है ना, रुद्र के जो 11 स्वरूप है, उनमें से हनुमान जी 11वें अवतार है शिव के, हाँ। लेकिन क्या करते हैं, शिव की पूजा न करके हनुमान जी की पूजा चलेगा, क्योंकि हनुमान जी सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं। किसी ने कह दिया, हनुमान जी का 40 पाठ करते हुए भी कुछ ठीक नहीं हुआ, रोग बढ़ता गया, तो फिर क्या करे? बोले, ओ तब फिर महामृत्युंजय का जप करो। और किसी ने महामृत्युंजय का जप किया, जप करने पर भी रोग ठीक नहीं, क्या करे? बोले, हनुमान 40 का पाठ करो। ले एक शुरू किया, उसको छोड़ा, फिर दूसरा किया, दूसरा किया उसको छोड़ा, फिर तीसरा किया उसको छोड़ दिया, फिर चौथा किया। ये क्या है बोलो? भ्रांति। सभी एक ही परमात्मा का स्वरूप है, हनुमान चाहे हो चाहे शिव हो, सब एक ही परमात्मा का स्वरूप होने के कारण वही सर्वरूप है। ये बुद्धि करके एक ही के आश्रय में न रहकर व्यक्ति भ्रांति से अनेक का आश्रय ले लेते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, ऐसे भ्रांत व्यक्ति है संसार में, सारे प्रयोजन पूरा करने में समर्थ भगवान शिव होते हुए भी शिव के ही अनन्य शरण, आपके अनन्य शरण को न करके वह उसके भी जाएंगे, उसके यहां भी जाएंगे, हाँ? इससे वो बढ़िया है, उससे वो बढ़िया है। संसार इतनी भ्रांत है कि भटक रहा है, परमात्मा के बारे में ही भ्रांत है, निश्चय नहीं कर पा रहा है, हाँ? निश्चय नहीं कर पा रहा है, भ्रांत है। तो एक दृष्टांत देते हैं ना महात्मा। किसी एक गांव में एक किसान था, बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ कि खेती करने के लिए उसको बहुत कठिन हो गया, बारिश नहीं हुई तो महात्मा आए, क्या हुआ बेटा? बोले कि महाराज क्या करें, देखिए बारिश नहीं हो रही है, पानी हो तो खेती करें, मेरे इतना जमीन है अब पानी नहीं है, मैं क्या करूं महाराज? महात्मा ने इस विचार किया, अरे बेटा जिस जमीन में तुम खेती करना चाहते हो उस जमीन के नीचे अपार जल है, जल का स्रोत है, तुम एक काम करो उसमें एक गहरा कुआं खोद लो तो पानी पानी है, फिर उसको लिफ्ट करके खेती कर लो, बारिश नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? महाराज कितनी गहराई खोदना पड़ेगा? महात्मा ने कहा कि लगभग 60 फुट खोदना पड़ेगा। 60 फुट यदि तुम खोदोगे तो पानी मिल जाएगा, फिर नीचे पानी नीचे ऊपर तांग खींच लो, उसके बाद खेती कर लो, बारिश न हो तो भी तुम खेती कर सकते हो। तो वो महात्मा तो चले गए, अब वो कुआं खोदने शुरू किए, खोदता गया 10 फुट खोदा, महात्मा ने 60 फुट खोदने के लिए कहा था, उसके नीचे खोदना थोड़ा उसको कठिनाई आई। महात्मा ने 60 फुट खोदने के लिए कहा था, 10 ये हो गया, बगल में फिर दूसरी जगह 10 खोदने शुरू कर दिया, कितना फुट हो गया? 10 प्लस 10 10 प्लस 10 20 हो गया ना, अब 20 तो हो गया, अब कितना रहा? 40 रहा ना, फिर 10 दूसरा खोद लिया उसने, हिसाब लगाया उसने, 30 हो गया, हाँ आधा हो गया। अब फिर क्योंकि गहराई में जाना उसको कठिन नहीं पड़ रहा था, और 60 फुट खोदो तो पानी आ जाएगा, महात्मा ने कहा 60 फुट खोदना है, तो 30 फुट खोद चुका वो, फिर उसने 10 फुट तीसरा खोद लिया, चौथा खोज लिया, 40 हो गया, ऐसे ही 6-10 फुट के 6 गड्ढे खोद ली, 60 फुट पूरा हुआ कि नहीं, है हो गया कि नहीं? अब पानी उसके मिलेगा कि नहीं, है पानी मिलेगा कि नहीं बोलो? नहीं मिलेगा, तो क्या वो गलती कर रहा है? है वो गलती कर रहा है, और हम सही कह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। 10 मिनट शिवजी की पूजा किया, महात्मा ने कहा 1 घंटा भगवान की सेवा करो, महात्मा ने क्या कहा? रोज 1 घंटा भगवान की सेवा करो, तो 10 मिनट शिवजी की सेवा की, और 10 मिनट कृष्ण की सेवा की, और 10 मिनट राम की सेवा की, 10 मिनट हनुमान की सेवा की, 10 मिनट देवी की सेवा की, 10 मिनट पता नहीं किस किस की सेवा करते हो, करते हैं कि नहीं? तो 1 घंटा पूरा होता है कि नहीं हमारा, बोलो। महात्मा ने कहा 1 घंटा पाठ स्तोत्र पाठ किया करो शिव जी का, 1 घंटा पाठ किया करो स्तोत्र पाठ, तो उसमें से 1 स्तोत्र 5 मिनट का देवी का कर लिया, और दूसरा 5 मिनट का गणेश का कर लिया, फिर 5 मिनट का किस किस का करते हो बोलो? जितने भी नाम प्रसिद्ध हैं सभी का करते हैं कि नहीं? तो परिणाम वो किसान सही है कि हम सही है बोलो? है जो किसान की हालत है वही हमारी हालत है, है? एक ही भगवान में पूरी निष्ठा करके उसी का ही लगातार निरंतर अनन्य भाव से 1 घंटा एक ही देवक देवी का परमात्मा का अनन्य भाव से पूजा करोगे, किसी और की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, ये बुद्धि तो है नहीं। स्तोत्रों में जो फलश्रुति सुन लेते हैं क्या है ये, अनेक स्तोत्र के पाठ करने की रुचि हमारी क्यों बढ़ती है, क्यों हो रही है ये स्थिति था मालूम है? स्तोत्रों में जो अंत में फलश्रुति सुनते हैं ना, बस वो फलश्रुति को सुनने के बाद हम निश्चय कर देते हैं, अरे इससे तो ये ठीक है, इससे भी ये ठीक है, इससे ये ठीक है, इससे वो ठीक है। ले जी मैम ने स्तोत्र पाठ करते करते फिर अचानक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगते हैं, करते हैं कि नहीं बोलो। अब भाई मैमने स्तोत्र का कह दिया पुष्प दंताचार्य जी ने, महेशान ना परो देवो महिमनो ना परास्तुति अघोरान ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वम। लेव जी इतना सुंदर फल स्तुति बता दिया, तो स्तोत्र पाठ कर दिया तो हो गया सब कुछ। तब फिर उसके बाद शिवतांडव पाठ करने शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? शिवतांडव में भी फलश्रुति आ गया। फलश्रुति क्या है? पूजा अवसान समये दश वक्त्र नित्रम या शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखिम ददा प्रददाति शंभो। जो ये शिव तांडव कृता तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि लक्ष्मी हमेशा आगे खड़ी हो जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? ये फलश्रुति सुनता है तो फिर वो महेशान्ना परम तत्व वो छोड़ देता है, फिर जटाटवी गलत ज्वल करने लग जाता है। क्योंकि इसमें फलश्रुति क्या आ गया? लक्ष्मी सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभो। ले जी फिर ये कर लेता है। और फिर उसके बाद लिंगाष्टकम पाठ करता है, हैं? ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। फिर वो जन्मज दुख, शरीर संबंधी सारे दुखों को नाश करने वाले भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा का प्रणाम करते ही लिंगाष्टकम इदम पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ये फलश्रुति सुनता है तब तक तो क्या बढ़िया स्तोत्र है, इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए महाराज। फिर उसको भी पढ़ता है तो सारे सारे तो दुनिया भर के इतना होता है सुबह स्तोत्र। और क्योंकि एक में विश्वास नहीं करता, जबकि सब एक ही है, जो भी पाठ करो एक ही है, एक ही परमात्मा है, ये बुद्धि तो होती नहीं, तब फिर अलग अलग स्तोत्र के पाठ करता है। शंकराचार्य जी बड़े सुंदर कह रहे हैं, यथा बुद्धि सुक्तौ रजतमिति काचास्मनि मणि जले पेस्ते क्षीरम भवति मृग तृष्णा सुसलिलम तथा देव भ्रांत्या भजति भवत अन्यम जड़मतो महादेवे सत्सम त्वं मनसि च नमत्वा पशुपते। लेकिन वह ये मानता नहीं कि एक ही आपके आश्रय में रहकर महादेव ही सब कुछ हैं, ये निश्चय न कर पाने के कारण भ्रांति से भटकते रहते हैं, हजार देवताओं का कल्पना करते हैं और हजार देवताओं की उपासना करते हैं, हजार देवताओं की स्तुति करते हैं, हजार देवताओं की सेवा करते हैं, इस तरह भटक जाते हैं कि 60 फुट एक ही जगह खोदने के लिए महात्मा कहे थे, हैं? महात्मा ने क्या कहा था? महात्मा ने कह दिया 60 फुट खोदो। महात्मा का आशय क्या था? एक ही जगह 60 फुट खोदो, ये कहने का अभिप्राय था। महात्मा ने कह दिया 60 फुट खोदो, 60 फुट खोद लिया, पानी नहीं मिल रहा है। ले जी तो प्रयोजन क्या हो रहा है? हम कर तो रहे फिर भी बहुत कुछ कर लेने पर भी कुछ फल सामने नहीं आता, करते हुए भी हम हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं कि नहीं? करते हुए भी असंतुष्ट के असंतुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं करने में हमारी त्रुटि है, भ्रांति है, कहीं ना कहीं हमारी भ्रांति है। भ्रांति क्या है? इसको भी करो, इसको भी करो, अरे भाई एक ही पर करो, निष्ठा की बात होती है, ये निष्ठा पर कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, गभीरे का सारे विशति विजने घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थम जड़मति ही समर्पेकं चेतस सरसिजमुमानाथ भवते सुखे नावस्था तुम जनैह न जानाति किमहो। आहा हे महाराज, ये संसारी लोग सुनते तो है कि भगवान की पूजा करो तो सब प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, तो किस विधि से पूजा करें? तो किसी ने कहा भगवान शिव कमल के फूल बड़े प्रसन्न हैं, कमल फूल से शिवजी की पूजा करोगे तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे। उदाहरण क्या देते हैं, भगवान विष्णु ने भी जब भगवान शिव की पूजा करना शुरू किया तो श्रावण के सोमवार के दिन विष्णु ने संकल्प किया कि भगवान शिव को मैं 1000 कमल फूल से पूजा करूंगा। संकल्प कर ली और 1000 कमल का फूल टोकरी में रखा और संकल्प करके आचमन प्राणायाम आदि सब करके पूजा आरंभ की और शिव सहस्र नाम ले ली हाथ में। ओम शिवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम भवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम मृडाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम हराय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, करते 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 पाठ करते गए कमल पुष्प चढ़ाते गए। भगवान शिव ने कहा इसकी मेरी कितनी निष्ठा है जरा देखें तो सही है, मेरी पूजा में इसकी निष्ठा कैसी है जरा देखें तो सही। भगवान शिव ने उसके टोकरी में से एक कमल का फूल, मैम ने स्तोत्र पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने, हटा दिया, गायब कर दी। अब भगवान शिवा माने विष्णु 1000 नाम पढ़ते हुए चढ़ा रहे थे है? अंतिम नाम 999 नाम का उन्होंने पाठ कर ली और कमल का फूल चढ़ाया। एक नाम बचा है नामावली में और इधर टोकरी देखते हैं तो खाली, एक फूल मिला ही नहीं। और देखो अंग भंग होता है तो अंगी विकल हो जाता है। तुमने प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 कमल पुष्प चढ़ाकर अर्चना करूं, यदि 1000 न चढ़ाकर 999 चढ़ा ली तो 1000 चढ़ाने का फल मिलेगा नहीं, 999 चढ़ाने का फल बेकार हो जाएगा। प्रतिज्ञा संकल्प तुमने जो की कितनी का, मैं केवल कमल पुष्प चढ़ाकर सेवा करूंगा इतना कहते तो जितना मिला उतनी से तुमको काम चल जाता, लेकिन तुमने 1000 संख्या निश्चित करके प्रतिज्ञा कर ली तो 1000 ही चढ़ाना पड़ेगा, 999 जो फूल चढ़ाओगे उसका कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध, बेकार हो जाएगा, अंग भंग हो गया तो अंगी भंग। अब भगवान विष्णु को बड़ा मुश्किल पड़ गया, प्रतिज्ञा तो कर चुके हैं 1000 चढ़ाऊंगा, अब क्या उनके प्रतिज्ञा भगवान शिव नहीं जानते थे कि 1000 चढ़ाऊंगा। कल जाकर यदि भगवान शिव ने कहा तूने तो 1000 चढ़ाऊंगा प्रतिज्ञा की थी, 999 क्यों चढ़ाया, ये क्यों नहीं चढ़ाया, इसलिए हम फल नहीं देंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, कह दिया तो हम क्या करेंगे। तो प्रतिज्ञा हानि किया तूने, तेरी प्रतिज्ञा हानि हुई। तो भगवान शिव बहुत विष्णु बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐसा भी नहीं है कि संकल्प किया जिस आसन में वो फिर उठे गए और कमल फिर दूसरा लेके आए तब फिर वो संकल्प टूट गया, अधूरा हो गया, आसन भंग हो गया, आसन भंग हो गया तो खत्म। हम लोग इस बात का ध्यान तो देते नहीं है, करते सब हुए लेकिन विधि से नहीं करते है? जब करने बैठते ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय, ए रामो दूध आया कि नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय है। अब क्या देखो तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी, 108 बार मैं जप करूंगा, 108 बार हुए, तुमने बीच में ये रामो कह दिया तो खंडित हो गया। अब यह एक रामो कहने के बाद फिर तुमने शुरू से शुरू करते माला और एक रामो न के बिना पूरा करते तो एक माला पूरा हो जाता, फिर दोबारे फिर शुरू करते करते फिर बीच में आ गया। अरे बेटा उठा के नहीं रामू, तो देखा तो नहीं चाय बनाना था उसको, आज स्कूल जाना है, जरा उठा दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ भाई? प्रतिज्ञा हानि। तो सब कुछ करते हुए संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि विधि में त्रुटि है। इसी तरह त्रुटि हो जाता है, तब रिजल्ट सामने नहीं आता है, तो तुम कहते हो हमने सब किया, फल नहीं आ रहा है। यहां यही कह रहे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया पता है? उठ के जाता हूं तो पूजा खंडित हो जाता है। अब प्रतिज्ञा की 1000 कमल चढ़ाना है, एक फूल की कमी हो गई, क्या करूं? उनको झट स्मृति आ गई, सभी भक्त लोग मुझे हमेशा क्या कहते हैं, कमल नयनम। सब लोग मुझे बार बार कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन कहते हैं। इसका मतलब मेरा नेत्र कमल है, नेत्र कमल है, तो फिर भगवान को कमल की प्रसन्नता है, कमल चाहिए। दो है, एक से मैं देख लूंगा, एक शिव जी को चढ़ाऊंगा। फाट उन्होंने वो अपने नेत्र निकाला और चढ़ा दी। बस किसने? वैष्णवो सुन लो, किसने? विष्णु ने। हैं? तुम तो नाम भी लेने नहीं चाहते हो शिवा, टाका मारो है? कपड़ा शिवानु छे नहीं कहेंगे, कपड़ा टाका मारवानु छे। टाका क्यों मारना है? शिव क्यों नहीं सियोगे? क्योंकि शिव आ गया ना उसमें। अरे रे 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 ले जी, ये कुछ दुराग्रही है, आप लोग नहीं है? हैं, ऐसे भी हैं भाई। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये सच्ची घटना है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। प्रेम कुटीर में आप लोग भी जानते हो, मैं प्रवचन कर रहा था, बहुत पहले की बात है, और प्रेम कुटीर के दयाराम मेवा वाला तो आप जानते हो ना, बहुत लोग जानते हो, दयाराम मेवा वाला बूढ़े काका थे, सब लोग काका कहते हैं, दयाराम काका मेवा वाले, और उनकी आदत भी आप लोग जानते हो, शिवोहम शिवोहम, जहां भी चलते थे, सड़क में भी चले तो जोर जोर से शिवोहम, और कहीं भी शिवोहम जोर जोर से करते हुए चलते थे। एक दिन की बात है, कुछ कृष्ण भक्त साधु, कृष्ण भक्त साधु, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए ना, कृष्ण भक्त साधु, वो मेरे पास आए थे, हम लोग उनसे बात कर रहे थे, मैं भी हूं भी, तो बैठे थे, हाथ में माला भी जप रहे थे, अब बात भी कर रहे थे हमसे, हैं? उनके हाथ में माला भी घूमती रहती है ना आज से, तो बात भी कर रहे थे। इतनी में वो आ गए दयाराम मेवा वाले, शिवो हम करते हुए मेरे कमरे में घुस गए जोर जोर से। तो जहां उन्होंने जोर जोर से शिवो हम कहने लग गए, ये जो कृष्ण भक्त साधु उन भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण, जोर, सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्ची घटना। ओहो, उनका शिवोहम ताकि हरे कृष्ण से गायब हो जाए, दब जाए, वो सुनना ही नहीं चाहे। तब फिर दयाराम काका ने मुझे प्रणाम किया, उसके बाद फिर उन साधुओं को प्रणाम करने के लिए झुके तो उनको मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हमका हमारा चरण मत छू। बोले क्यों महाराज, आप तो साधु है। बोले नहीं नहीं आप तो शिव हो, हम तो जीव हैं, हम तो परमात्मा के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, आप तो शिव हो क्योंकि आपने शिवो हम कहा, अब शिव हमारे चरण छुए ना, ना ना छूने नहीं दिया। अब ये क्या है बोलो, ये क्या है? पूर्वाग्रह है कि नहीं, दुराग्रह है कि नहीं है? उनको कह देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं महाराज हम अपना चरण क्यों छुआएंगे, आप चरण मत छुओ, आप भजन करो, हम भी भजन करते हैं, चरण छूने की क्या जरूरत, दूर से हाथ जोड़ लो, कह देते तो खत्म हो जाता। वो उन्होंने व्यंग किया, व्यंग उक्ति उनकी, आप शिवा है, साक्षात शिवा है, तो हमारा चरण क्यों छोएंगे आप शिव? ले जी ठीक है, वो साक्षात शिव है तो तुम छू लो है? वो साक्षात शिव है तो तुम उठ के छू लो, तुम क्यों नहीं छू रहे हो? कह तो दिया कि आप शिव है, इसका मतलब क्या है? क्या सही भावना से सही हृदय से ये बात अभिव्यक्ति हो रही है? दुराग्रह है। तो भगवान विष्णु ने तो आंख निकाली और चढ़ा दी, तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह तुम्हारी भक्ति, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो बोलो। बोले नहीं महाराज, आप इसी तरह प्रसन्न रहें, हमको इतनी और कुछ नहीं चाहिए। तब फिर वो आंख भगवान ने वापस कर दी, उनका आंख जैसा का वैसा हो गया, साथ में सुदर्शन चक्र दिए। विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान शिव के दी हुई है, ध्यान रखना है। ये कैसे चक्रपाणी हो गए आज विष्णु? किसके कृपा से? शिव कृपा से। कैसे? उन्होंने अनन्य भाव से भक्ति की और अपना नेत्र ही उनको सर्वस्व मानकर नेत्र कमल चढ़ा दिया उनको, कोष नुकसान नहीं हुआ, ये निष्ठा की बात है। लेकिन कुछ लोग ये देखते हैं भगवान शिव को कमल प्रिय है तो कमल से अर्चना करने के लिए गहरे से गहरे सरोवर में कमल के फूल लेने के लिए आपने जीवन की भी बाजी लगाकर उस सरोवर में घुसते हैं और कमल तोड़कर लाते हैं, तब आपकी पूजा करते हैं। एक ये गभीरे का सारे बिसती, और दूसरा बिजने घोर बिपिने। कुछ लोग भगवान शिव को जंगल के कुछ फूल ऐसे बहुत प्रिय है, जैसे पहले भगवान शिव को केतकी का फूल, केवड़ा का फूल अति प्रिय था, अति प्रिय। और वो केवड़ा घोर जंगल में होता है और कांटे कांटों के बीच में होता है केवड़ा। लेकिन जिस दिन से केवड़ा ने भगवान शिव से झूठ बोला, ब्रह्मा के पक्ष में लगकर भगवान शिव से झूठ बोला, तो भगवान शिव ने उसका तिरस्कार कर दिया। तब केवड़ा रोने लगा, महाराज आप हमेशा मुझसे प्रिय करते थे, अब आपने मेरा तिरस्कार कर दिया। महाराज ऐसा मत करो, दया करो, कृपा करो। तो भगवान शिव ने कह दिया ठीक है, साल में एक दिन मैं तुमको स्वीकार करूंगा, और कोई व्यक्ति यदि उस दिन तुम्हारे फूल से, तुमसे यदि मेरी अर्चना करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होगा। केवड़ा तीज, उस दिन से उसका नाम ही अमर हो गया केवड़ा तीज, और उस दिन भगवान शिव को केवड़ा अति प्रिय है। उसके लिए वो केवड़ा खोजने के लिए घोर जंगल में जीवन को बाजी, कहां बाघ भालू शेर चीता रहते हैं, वहां पर भी व्यक्ति जाता है और केवड़ा को फूल तोड़कर लाता है और भगवान शिव को चढ़ाता है। विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थम जड़मति। एक कमल तो होता है सरोवर में खिलने वाला, एक कमल होता है हिमालय में होता है जहां बर्फ है, वहीं वो फूल खिलता है, उसका नाम है नील कमल। आप केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, विशेष करके भगवान शिव को केदारनाथ में, उससे भी ऊपर जहां बर्फ बर्फ है वहां से नील कमल लाकर भगवान शिव को पूजा करते हैं। वहां के पुजारी आप लोगों को प्रसाद के रूप में नील कमल का फूल देते हैं, और वो शिव को नीलकमल प्रसन्न है करके कठोर से कठोर, जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां बर्फ ही बर्फ है, ऐसे जगह भी व्यक्ति जाकर नीलकमल को तोड़ के लाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये सब मूर्ख है। ले जी शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सब मूर्ख है, नीलकमल के लिए अपने जीवन की बाजी लगा रहा है, कमल के फूल के लिए गहरे से गहरे सरोवर में जा रहे हैं, केवड़ा के लिए घोर से घोर जंगल में जा रहे हैं, ये नहीं जानते भगवान को सबसे इन सबसे भी ज्यादा प्रिय फूल उसका हृदय है। और अपना हृदय तो अर्पण करते नहीं है, और खाली कमल का फूल के लिए गहरे सरोवर में डूबने जाएंगे, नील कमल के लिए पहाड़ के चोटी में जाएंगे, केवड़ा फूल के लिए जंगल को घोर जंगल में भटकेंगे। लेकिन ये सब मूर्ख है। मैंने तो इतनी समझ लिया महाराज, न मैं नील कमल लाने वाला हूं, न सरोवर के कमल लाऊंगा, न केवड़ा ले आऊंगा। आपको इन सबसे भी ज्यादा प्रिय जो सबसे बढ़िया फूल तो क्या है, समर्पेकम चेतस सरसिजा, ये तो चेतस सरसिजा, हृदय कमल। हृदय रूपी कमल को कोई अर्पण नहीं करता। और मैं जानता हूं उमानाथ, ये संबोधन है, हे उमानाथ आपको सबसे ज्यादा प्रिय तो हृदय कमल है, और मैं उसी हृदय कमल को आपके चरण में समर्पण करता हूं, बाकी सरोवर में पहाड़ों में जाने की हिम्मत मेरी नहीं है। बस समर्पेकम चेतस सरसिज उमानाथ भवते सुखे नावस्था तुम। बस अपने पास है, पैदाइश से ही अपने पास है, न कहीं पहाड़ की चोटी में जाना, तुम जहां हो वहीं तुम्हारा हृदय ही है, उस हृदय कमल को वहीं आराम से भगवान शिव के चरण में अर्पण कर दो, तो फिर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। और वो करते नहीं, जड़मती इधर उधर भटकते रहते हैं भगवान को खुश करने के लिए। सुखे नावस्था तुम जन इह न जानाति किम हो। ओहो, आश्चर्य की बात है, जन न जानाति, इस बात को संसारी लोग अज्ञानी लोग नहीं जानते, इसीलिए हृदय कमल को तो भगवान के चरण में अर्पण नहीं करते, और बार बार से इधर के भौतिक फूलों को खोजते भटकते रहते हैं। सबसे बढ़िया हृदय कमल अर्पण करो और सुखपूर्वक आनंद से रहो। मैं तो यही करूंगा भाई, न पहाड़ में जाऊंगा, न जंगल में जाऊंगा, न सरोवर में जाऊंगा, बस आराम से यही बैठे बैठे यही आपके लिए हृदय कमल अर्पण है बारस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।